जो है वो या तो सियासी झंडा है, सियासत में खूब काम कर रहे हैं, मस्जिदों को आबाद नहीं करते, दाढ़ियाँ पूरी नहीं रखते, सुन्नतों का एहतमाम नहीं करते, तो सियासत गालिब है। तो तबलीगी जमात में सिर्फ तबलीग है और दीन है अल्हम्दुलिल्लाह। कमज़ोरी हर जमात में भी होती है और हर शोबे में कमज़ोरी है। क़ुर्ब क़यामत में हम हैं, हम चाहते हैं हसन बसरी वाला तकवा मिल जाए। ही ख़यालस्तो मुहालस्तो जुन, हज़रत हसन बसरी वाला तकवा फ़ी ज़माना तलाश करना भी नाकाम होगा आदमी। तो बजाय इसके अच्छाई को देखे, और बुराई की इसलाह का तरीक़ा है कि ख़ास अलग तरीक़े में कह दे ये तो सही नहीं है। अमूमी तौर पर ऐसे बातें शिकायत करते हैं, अब्बा बीमार थे, अम्मा बीमार थी, वो चले गए छोड़ के, तो ये बताया जाएगा। अगर कोई और तीमारदार नहीं है तो छोड़ के जाना जायज़ नहीं है। इसलिए जिसको आपने जहाद पे जाने के बजाय वालदेन की खिदमत का फरमाया, उसको वालदेन की खिदमत का उसको एहतियाज होगा, वहाँ पे एहतियाज होगा कि उसके सिवा कोई भाई नहीं है। कहीं छः भाई हैं, अब छः के छः वहाँ रहेंगे, एक दो भी काफ़ी, तीन चार जा सकते हैं। वो अकेले होंगे, उन्होंने हालात बताए, मेरे वालदेन ऐसे हैं, बूढ़े हैं, उनकी खिदमत, तो भाई तुम्हारी खिदमत तुम्हारी यही जिहाद है, तुम यही खिदमत करो, यही तुम्हारा जहाँ। इसी तरह तबलीग में भी अगर बीवी सख्त बीमार है और विलादत के मसाइल हैं, कौन फिर ये करेगा? देवर करेगा? कितनी शर्म व हया की बात, ससुर भी करे तो भी शर्म व हया आती है। तो इसलिए उस वक्त में रहना ज़रूरी है, ये कोई कुर्बानी नहीं है। इसको जो कुर्बानी समझते वो ऐसे ही कुर्बानी, जैसे कहते हैं लड़की आलिमा बन रही है, एक साल और चाहिए हमें, अभी तो हम शादी नहीं, एक साल दो साल बाद हम करेंगे। फिर वो कहते हैं कि नहीं भाई हमें तो जल्दी चाहिए, फिर उन्होंने रिश्ता छोड़ दिया, ऐसा भी हुआ कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। वो समझ रहे हैं हमने बड़ी कुर्बानी दी बेटी को आलिमा बनाने की वजह से, हमने कुर्बानी दे दी रिश्ते की, ये कुर्बानी नहीं है। रिश्ता जब जोड़ का मिल जाए तो इतनी भी ताखीर सही नहीं जितनी जमात में ताखीर सही नहीं, जितनी जमात में ताखीर सही नहीं। मसला बता चुका हूँ, अगर इमाम ना आए तो इमाम का इंतज़ार करना चाहिए, ये नहीं फ़ौरन इधर उधर देखते कोई और खड़ा हो जाए, कोई नहीं। कितनी देर में नमाज होती? उमूमी तौर पर हमारे दयार में 10 मिनट की नमाज होती, इतनी देर इमाम का इंतज़ार किया जाएगा। अगर वो इंसान है वो भी, कोई अचानक तकाजा आ गया, अर्जेंट ऐसा होता है कि गए छोटे इस्तंजे के लिए, हो गया बड़ा इस्तंजा, ऐसा भी होता है, तो फिर क्या करेगा? वो भी तो इंसान है, 5 मिनट लेट है, परेशान ना हो, बैठे रहें मस्जिद में, तो बैठे हैं लोग परेशान हो जाते हैं। वजह क्या है? मस्जिद से जान छुड़ाते हैं, वरना क्या हुआ इंसान? और सऊदी अरब में अभी तक है, और सुन्नत का तरीक़ा भी यही है। नबी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाते, सहाबा देख के खड़े हो जाते हैं आपको, बस ये तरीक़ा था। टाइम मुकर्रर नहीं था कि धूप यहाँ पे आएगी, चलो घड़ी नहीं था उस वक्त, धूप यहाँ आएगी तो जोहर की नमाज होगी, असर की होगी, सब कुछ भी नहीं। जब नबी अलैहिस्सलाम आएंगे नमाज खड़ी हो जाएगी। तो आइम्मा हरम में भी है, वहाँ तो ये शवाफे के मसलक पे कि अजान वक्त पे होती है, बिल्कुल जैसे ही वक्त दाखिल हुआ अजान हो गए। अब 5 मिनट से 10-15 मिनट में किसी वक्त भी इमाम आ सकता है। सुन्नत आप ज़्यादा आराम से पढ़ेंगे, बताए इमाम साहब आके अल्लाह अकबर कह दिया उन्होंने, सुन्नत भी आप इतनी पढ़ें कि हो सकता है इमाम साहब जल्दी आ जाएं। तो असल ये है, लेकिन वक्त वक्त इसलिए मुकर्रर कर दिया कि लोगों को आसानी हो। चलो भी अब लोग इतनी आसानी करते हैं कि उसके बाद आते हैं, वक्त ख़त्म होने के बाद आते हैं, 2 रकत मिल रही है, किसी को 1 रकत मिल रही है, किसी की पूरी नमाज चली गई। अफसोस होता है देख के, बार बार मैं इस बात को बयान करता हूँ, मेरा दर्द है ये कि नमाजियों को, हमारे साथियों को तो कम से कम चाहिए आदमी पहले से आए, तकबीर उला का एहतमाम करे, पहली सफ़ का एहतमाम करे, कर सकता है, सिर्फ अपनी सुस्ती और कुछ नहीं। ये जो कहते हैं नहीं असल में ये कुछ देर हो जाती है, ऐसा हो जाता है, ये सब ऐसी सुस्ती है। अजान के वक्त तैयारी शुरू करें, बिलफर अजान के वक्त तैयारी शुरू कर ली, अब पता है ग्राहक आ गया, अब उसको भी निमटा लिया, चलो अब पता है कितने मिनट का रास्ता है मस्जिद तक, बाइक पे या पैदल 5 मिनट 4 मिनट जहन में होता है, इतना पहले हमें वहाँ से निकलना है ताकि तकबीर उला तो मिल ही जाए हर हालत। अगर बिलफर अजान के बाद कोई ग्राहक आ भी गया और ग्राहक भी अच्छा खासा है, उसको मना करेंगे तो बाद दफ़ा नाराज़ हो जाते, तो उस काम को कर लिया। वजू रहने से ये फ़ायदा है, अजान के पहले बाद फ़ौरन वजू कर लिया। दुकानदारों के लिए, कारोबारी लोगों के लिए कह रहा हूँ, अब तैयार हैं वो। अब उसके बाद ग्राहक भी आ गया तो अब ग्राहक को निपटा दे, सिवाय जुमे की अजान के, किसी और अजान पे फौरन दुकान बंद करना जरूरी नहीं है। जुमे की जब अजान हो जाए तो अब दुकान वजरुल बई छोड़ दो, बेचना बिल्कुल, दुकान खोलना अब जायज़ नहीं है। लेकिन आम अजानों में 20 मिनट, 15-20 मिनट पहले जो अजान, इसलिए तैयारी शुरू कर दो। उसके साथ साथ अगर कोई कर रहा है तो हराम नहीं है, लेकिन ये कोशिश हो कि हम जब पहुँचें तो बस जमात खड़ी होने से पहले हम पहुँच जाएँ। अभी गुरूब रोज़ाना बढ़ रहा है, फिर भी आप देखेंगे मसबूक रहते, रोज़ाना 1-2 मिनट बढ़ रहा है, 6:15 पे आ गए हम, फिर भी लोग मसबूक खड़े रहते हैं, क्योंकि इसको नहीं देखते, बस देखते अजान हो गई चलो अब वजू करते हैं, अजान हो गई अब वजू करते हैं, अब मस्जिद जाते हैं, 7-8 मिनट लग गए इसमें, इमाम साहब इंतज़ार करेंगे आपका, तो करें और आगे दूसरों तक भी पहुंचाएं, जल्दी जल्दी चलो मस्जिद, क्यों बैठे, हाँ अभी करते हैं वजू, ऐसे होता है जैसे महफिलों में 4-6 आदमी, हाँ अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो अजान हुई, बहुत टाइम का, अजान होगी तो टाइम कहाँ है, तैयारी करो। मैं तो कहीं जाता हूँ तो इसका बेहतरीन तरीका होता है अजान के साथ चले गए, ताकि बैठा हुआ बेकार बातें होती, और सुना क्या सियासत में क्या हो रहा है, ऑल फॉल बातें, आदमी चला गया मस्जिद, आराम से आया, फिर खाने के वक्त में आ गया, हाजिर हो गया, ऐसे मिला वजह कि मिलना मिलाना तो रस्मी रह गई आजकल। हाँ उसमें भी है को कोई शेख है या कोई अल्लाह वाला है, मुफ्ती नजम अल हुसैन साहब के साथ बाद जब हमारी दावत तो वहाँ हम बैठे रहते हैं, जब तक वो बैठे रहते हैं। नेक सोहबत का तो मसला ही अलग है ना, आम दोस्ती और नेक सोहबत में ज़मीन आसमान का फ़र्क, आम दोस्ती है, आम दोस्ती और उसमें क्या होता है, आम दोस्ती में कभी गीबत हो रही है, कभी चुगली हो रही है, कभी ड्रामे की बात, कभी सियासत की बात, क्या काम है बताइए। तो पहली वक्त में, अव्वल वक्त में अगर हम, ये जो गुरूब होता है, गुरूब के 5 मिनट बाद हमारे यहाँ अजान होती है, गुरूब को अहम बना लें, गुरूब को के वक्त में आना है तो 5 मिनट पहले आ जाएंगे, वजू करके बैठ जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, अजान हमारे सामने, अजान का जवाब दें, अजान का जवाब देना कितना बड़ा सवाब है, आपने फरमाया जो अजान का जवाब दे, दुआए वसीला पढ़े, हल्लत लहू शफाती, मेरी शफात उसके लिए हलाल हो जाएगी, हलाल का तर्जमा, हल्लत का तर्जमा वजबत लहू शफात, कि मेरी शफात उसके लिए वाजिब हो जाएगी। बताइए कितना छोटा सा अमल है, जिसके लिए शफात वाजिब होगी ना उसको दाढ़ी रखने की भी तौफीक होगी, ये ना सोचे कि दाढ़ी भी मुंडाएं और नमाजें भी छोड़ें, सब तौफीक होगी। आप एक काम तो जरूर पकड़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह की एक तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला कयामत के दिन चेहरा रोशन करेंगे, जब चेहरा रोशन करेंगे तो मुंह उजाला करने वाले अमाल की भी तौफीक देंगे, उनके जिम्मे है, हम क्यों सोच रहे हैं, कोई कह दे मैं तुम्हारे बेटे को लगाऊंगा, बाहर भेजूंगा, सारे इंतजाम उसके जिम्मे, तुम अपने बेटे को बाहर भेजो। हजरत मौलाना मदर साहब के बारे में एक साहब ने कहा था, हजरत वाला, आपका एक ही बेटा, आप इसको बाहर तक पढ़ाइए, पैसे की फिक्र ना कीजिए, मैं दूंगा। हजरत ने फरमाया एक ही बेटा इसलिए आलिम बनाऊंगा, एक ही बेटा तो 100% अल्लाह के रास्ते में दे दिए। आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम चल रहे हैं, उनके 4 बेटे, उन्होंने भी मुख्तलिफ शोबे संभाले हुए। तो मस्जिद कोशिश होनी चाहिए, पहले आने की आदत, 4 सुन्नत पढ़ने की कोशिश करें, ईशा की भी 4 सुन्नतें हैं, ईशा से पहले, असर से पहले 4 सुन्नतें, निकलते हैं ऐसे टाइम पे, ट्रैफिक दूर वाले जो हैं, हाँ बस 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, तुम्हारे लिए सारी गाड़ियां रुकी रहेंगी, कितना रश होता है खासकर सैटरडे संडे नाइट, लोग ज़्यादा निकलते, अब ज़रा से देर से भी आए, 2-2 बजे तक गाड़ियां चल रही हैं, काम हो रहा है, तो उसी वक्त से आज से 15 मिनट पहले निकले, पहले मस्जिद पहुंच जाएंगे। इसी तरह ये पता नहीं है कि 7:45 नमाज है या 8 बजे, तो आप 7:45 के लिहाज से आइए, मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजरेगा। तो इमाम का इंतज़ार करना ज़रूरी है, इमाम अगर नहीं आया फिर अब दूसरा आदमी खड़ा होगा। हाँ आजकल यही सूरत होती है कि इमाम अक्सर मुअज्जिन साहब को या अपने जो भी उनके खास होते हैं जो मुकर्रर हैं या नहीं, उनको बता के जाता है मेरी जगह नमाज पढ़ा लेना, अब वो टाइम पे खड़ा हो गया, यानी कि तुमने क्यों खड़े हो रहे हो, इमाम ने जब इजाज़त दी है, या इजाज़त ज़बानी या उर्फ़ी, उर्फ़ी भी है, जैसे यहाँ उर्फ़ी है कि बताया कि बंदा बाहर गया हुआ, अब कोई भी नमाज़ पढ़ाएगा जो यहाँ पे मुकर्रर है वो नमाज़ पढ़ा ले। हाँ जब ऐसा होता है कि हम यहाँ से देर या इस वक्त में अगर कोई पता भी है कि घर में, फिर कोई आ जाए खड़ा हो जाए तो उसको सजा दी जाएगी, कैसे खड़े हो गए बगैर इजाज़त, हमारी तकबीर उला निकल गई, इमाम तो लेट हो सकता है ना, इमाम के पास क्यों, ये हर चीज़ के आप देखें, हर चीज़ के जो वो होता है माहिर होता है या उसका चलाने वाला होता है, उसके पास उसका एडवांटेज होता है। कमेटी जो जमा करता है सबसे पहले खुद लेता है हर चीज़। फैक्ट्री मैनेजर के इख्तियार अलग होते हैं, वो घर जा रहा है सब पूछें कहाँ जा रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं, वो घर जा रहा है उसकी मर्जी है। मैनेजर के इख्तियार अलग हैं और आम स्टाफ के अलग है, मजदूर तो पूछ भी नहीं सकता। तो इसीलिए इमाम को ये फैसिलिटी हासिल है, वो आके 1 मिनट बाकी हो नमाज पढ़े, 2.5 मिनट 3 मिनट की, सब लोग बैठे रहें क्योंकि वो 2 रकअत तहियतुल मस्जिद पढ़ रहा है, कोई हर्ज नहीं है। मौलाना मदर साहब अक्सर देर से आते हैं, टाइम हो गया हाँ चलते हैं, ताकि ये ना हो कि बिल्कुल टाइम पे आना इमाम का ज़रूरी है, क्योंकि मौलाना कोई इमाम थोड़ी है कोई। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला के फजल व करम से हजरत वाला की गुलामी के सदक़े मैं भी कोई मुकर्रा इमाम नहीं हूँ कि पैसा लेता हूँ, तो अल्लाह का फजल है। मौलाना भी इसीलिए आराम से आते हैं, कभी देर हो गई और वहाँ भी इजाज़त नहीं है, बगैर इजाज़त के कोई खड़ा हो जाए, हाँ जिसको मुकर्रर किया वो मुस्तस्ना। तो ये आदत बनाने से बनती है, आदत बनाने से बनती है। थोड़े दिन आदत बना ले कि मुझे 4 सुन्नतें पढ़नी है, ईशा से पहले भी असर से पहले भी, जब थोड़े जब आप रोज़ाना कोशिश करेंगे 7 दिन में से 3 दिन आगे पीछे होंगे, ये होना भी चाहिए। रोज़ाना जान के हमेशा पढ़ना ये भी सुन्नत के खिलाफ है। अब देखिए ये शरीयत का एतदाल देखिए, रोज़ाना असर की सुन्नत पढ़ना साल भर ये सुन्नत के खिलाफ है। ये मौलवी साहब बैठे मुफ्ती हैं, क्यों कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्तकिल नहीं पढ़ी, इसीलिए तो गैर मुअक्कदा बन गया, इसीलिए हम हमेशा छोड़ते हैं क्योंकि गैर मुअक्कदा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। नहीं, इसके लिए 4 दिन पढ़े 3 दिन छोड़ दें, 3 दिन पढ़े 4 दिन छोड़ दें, कभी नहीं है बिलफर्ज कोई तिलावत कर रहा है। तिलावत हजरत थानवी रहमतुल्लाह ताला ने इसको लिखा है कि आवाम को समझाने के लिए सबसे अफजल नफिल नमाज है, अल्लाह का कुर्ब दिलाने वाली, क्योंकि उसमें सजदा भी है रुकू भी है। नमाज में आदमी अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होता है, सजदा भी है रुकू भी है, तस्बीहात भी है, नमाज कुरान भी है। लेकिन उसके बाद कुरान की तिलावत बिलफर्ज कोई यार अभी इधर उठने बैठने में कुछ यानी उसको वो है थकन है, वो बैठा हुआ तिलावत कर रहा है तो कोई गलत थोड़ी कर रहा है, वो सही वक्त टाइम स्पेंड सही कर रहा है, अंग्रेजी दानों से खिताब कर रहा है, सही वक्त गुजार रहा है। तो उसको अपने कहे कि आपने 4 सुन्नत नहीं पढ़ी है, कुरान पढ़ रहे बैठे, कुरान पढ़ना भी कम अफजल नहीं है। उसके बाद पहले सबसे पहले नफिल यानी 4 सुन्नतें, उसके बाद तिलावत, उसके बाद जिक्र। अगर वो बैठा हुआ जिक्र कर रहा है, आपने देखा अजान से बैठा नमाज तक जिक्र कर रहा है, हो सकता है उसका मामूल इतनी देर का पूरा हो रहा, वो भी अल्लाह के साथ है, वो भी अल्लाह वाला है। तो इसलिए ये सब चीज़ें सही हैं, लेकिन ये बता रहा हूँ कि कभी छोड़ भी देना चाहिए। विलफर आपने इरादा कर लिया और ऐसा करने लगे तो कभी जान के छोड़ के तिलावत आ जाएं पहले, लेकिन आके 2 रकअत तहियतुल मस्जिद पढ़ लें और फिर तिलावत करने बैठ जाएं, जिक्र करने बैठ जाएं, ताकि वो सुन्नत भी पूरी हो जाए। ये सुन्नत का इल्तिज़ाम ना हो, गैर मुअक्कदा का इल्तिज़ाम ठीक नहीं है इस तरह। हर चीज़ उसके दर्जे में होनी चाहिए, जैसे शब बारात आ रही है, कब्रस्तान जाते हैं लोग, हो सब समझते हैं कब्रस्तान जाना ज़रूरी है, औरतें तक जा रही हैं वहाँ, चका चौंद है, इतनी बिक्री होती है फूलों की, सबकी मगफरत करा के ही आएंगे कोई। अरे मगफरत फूलों से नहीं होती, ईसाले सवाब से होती, इसकी तरफ कम लोग तवज्जो करते हैं। फूल चढ़ाने से क्या होगा, अब सुनिए कि वो उम्मत की दलील कितनी प्यारी है। जब किसी कोई वो समझदार आदमी था उससे कहा, ये बताओ तुम जो फूल चढ़ाते हो ये तो 150, 200, 500 के 1000 रुपये की लेते होंगे, वहाँ पे फूल चढ़ाया फलाने दरबार में, ये बात किसने लिखी है, हजरत मौलाना अब्दुल मजीद सवाती साहब, अब्दुल हमीद सवाती साहब ने लिखी है कि उस ज़माने की, उनका इंतकाल हुए 20-30 साल हो गए, उससे पहले की 40 साल पहले की बात होगी गोया, कि फलाने दरबार पे कोई बाहर का हुक्मरान आया था, उसके साथ मिल के हमारे हुक्मरान ने 2 लाख की चादर चढ़ाई उसके ऊपर, 2 लाख की चादर चढ़ाई, फूलों की चादर होती, 2 लाख रुपए की। अब उससे पूछे 2 लाख रुपए की चादर का क्या मसरफ है यहाँ पर, बस भाई खूब लोगों में नाम भी हो, खूब अच्छा करना है, ऐसा करना। अब आपको ये गुमान है खुदा ना खास्ता कि आपके बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग, सब सबके बुजुर्ग हैं, आप ही के नहीं हैं, सबके बुजुर्ग, क्या वो जहन्नम में जल रहे हैं जो आप फूल डाल के उसको जिक्र करने तक आदाब से रोक रहे हैं, यही रिवायत है ना जिसको लिया जाता है, एक रिवायत है और एक सहाबी का अमल है। हमारे शेखुल हदीस ने इसको तहकीक के साथ फरमाया, सहाबा ने उमूमी तौर पर टहनी भी नहीं रखी। आपने टहनी किस लिए रखी थी? रिवायत मारूफुल हदीस में भी नकल की, अक्सर हदीसों में, हदीस की किताबों में रिवायत आती है, आप गुजर रहे थे कब्रों से, आपका गुजर हुआ। अगलब यह है कि मुसलमान की कब्र थी, काफिर की होती तो क्यों रखते, काफिर के तो मगफिरत का सवाल ही नहीं। तो आपने फरमाया दो कब्रों वालों को अजाब हो रहा है, एक को चुगलखोरी की जुर्म में, चुगलखोरी करता था, इधर से उधर लगाता था, बहुत अच्छा लगता है, गुनाह है, गुनाह कबीरा है, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, लादुल जन्नत कत्तातुन, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, सीधी बात। तो चुगलखोर का चुगलखोरी में अजाब हो रहा था, और दूसरे को पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से अजाब हो रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने क्या किया, ये आप अलैहिस्सलाम की तख्सीस थी और आप पर अल्लाह ने गोया इल्हाम फरमाया था कि आप ऐसा कीजिए तो हम ऐसा करेंगे, ये खास चीज़ें होती हैं। तो आपने एक टहनी उठा के रखी दोनों कब्रों पर, एक एक टहनी, हरी टहनी, और आपने फरमाया जब तक ये टहनी हरी रहती है अल्लाह का जिक्र करती है। देखिए दरख्त भी अल्लाह का जिक्र करता है, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह बयान ना कर रही हो, वलाकिन ला तस्बीह, वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहाहुम, मगर तुम लोग उनकी तस्बीहात को समझते नहीं हो। तुम्हें क्या पता छिपकली क्या तस्बीह कर रही है, हाथी क्या तस्बीह कर रहा है, सब कर रहा है। तो ये तो जानदार हैं, दरख्त तो इस लिहाज से एक जान है एक लिहाज से, लेकिन क्या है, पत्थर भी जिक्र कर रहा है, हर जर्रा जर्रा कायनात का, इस कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की याद में मशगूल है, सब अल्लाह को याद कर रहे हैं। तो हम सब हजरत इंसान हैं जो गाफिल हैं, जिसको हुक्म दिया गया है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। इसीलिए हम जब याद करें समझ ले अल्लाह ताला हमें याद फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला हमें याद फरमा रहे हैं, हम क्या याद करेंगे, अल्लाह ताला याद फरमा रहे हैं। हजरत साबित बुनानी ने कहा अपने शागिर्द से, लाओ तस्बीह लाओ अल्लाह ताला याद फरमा रहे हैं। कहा आपको कैसे पता चला, वही का ज़माना तो बंद हो ख़त्म हो गया। फरमाया वही की रोशनी में बता रहा हूँ, वही की रोशनी में बता रहा हूँ, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह ताला फरमा रहे तुम हमें याद करो हम तुम्हें याद करेंगे। अल्लाह याद कर रहे हैं जभी तो हमें याद की तौफीक दी है, जभी तो हमें याद की तौफीक दी। तो हरी हरी टहनी आपने क्यों रखी, क्योंकि हरी टहनी जिक्र कर रही है, वो जब तक जिक्र करेगी आपने फरमाया इनके अजाब में तख़फीफ हो जाएगी, ख़त्म नहीं हो जाएगा कम हो जाएगा, फिर जब खुश्क हो जाए बात अलग है। बस ये है इस फूल चढ़ाने की सारी रुदात सारी। फिर ऐसा होता कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद भी चढ़ा रहे हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर भी, रवायात में वो भी चढ़, तो आज तक हम भी करते हैं, हमें क्या है, जब सहाबा ने किया तो हमें इससे क्या है, सहाबा का हर अमल हमारे लिए मशाल राह है, असहाबी का नजूम, तो एक सहाबी का अमल मिलता है इस तौर पर, बाकी और सा इसको खबर आहाद कहते हैं, एक अमल एक खबर हो तो। इसलिए ये कोई सुन्नत नहीं कह सकते इसको, सुन्नत उसको कहते हैं जो आपने तवातुर से किया या आपने उसका हुक्म दिया, आपने उसको तवातुर से किया या उसका हुक्म दिया। इसीलिए शलवार कमीज को सुन्नत नहीं कह सकते, जुब्बे को भी सुन्नत नहीं कह सकते, लिबास ढीला ढाला हो ये सुन्नत है, ढीला ढाला हो, सतर को छुपाने वाला हो, पाँचे को टखने को खुला रखता हो बस, और ढील और जिस्म को छुपाने वाला हो, सतर को छुपाने वाला, आजकल की जैसी पैंटें हैं ये सतर नहीं छुपाती हैं, सतर को दिखाती हैं, लिहाजा इन पैंटों के बजाय ऊपर अगर बिलफर्ज कोई पैंट पहना हुआ एक कुर्ता डाल के आ जाए ताकि कुर्ता छुप जाता, कुर्ता भी थोड़ा लंबा हो, देखिए यहाँ एक घुटने के नीचे एक हड्डी है, यहाँ तक कुर्ता पहनना चाहिए ताकि जब आदमी रुकू सजदे में जाए तो बेपर्दगी ना हो। पहले अलीगढ़ वाले ज़माने का न सोचिए, वो सब ज़माने के साथ हालात बदल गए, अब मिस्टर लोग भी लंबे कुर्ते पहनते हैं, पहनना चाहिए अच्छी चीज़। तो आपने हरी टहनी रखी, इससे सारी ये जो फूलों की चादर चढ़ाने की नहीं था, पहले टहनी फिर उसके बाद फूल फिर अब फूलों की चादर बनी बनाई सब बताई। बाकी उन उम्मत ने उन साहब से कहा जो समझदार आदमी थे, समझदार आदमी थे, समझदार से ही बात करनी चाहिए, ना समझ के सामने टक्कर मारने से कोई फ़ायदा नहीं। फरमाया ये बताओ ये फूल जो ज़माने 5-10 रुपये के थे अब 50 रुपये के 500 रुपये के भी हैं तो कितने महंगे, ये फूल देख तो ये बताओ कि जिन बुजुर्ग के चाद के ऊपर आप चादर चढ़ा रहे हैं फूलों की, क्या उनको अजाब हो रहा है इसलिए आपने अजाब में तख़फीफ़ के लिए अमल की? नहीं नहीं तौबा तौबा, बुजुर्ग को क्यों अजाब होगा? अपने वालदेन के लिए भी आदमी गुमान नहीं करता, क्या अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाएंगे? तो जब ये नहीं है, अब दूसरी सूरत ये कि वो जन्नत में है, रौदतुम बिर्रियादिल जन्ना में, तो तुम्हारे ये 500 के फूल किस काम के हैं मियाँ? सारी दुनिया की कीमती फूल उसके सामने कुछ भी नहीं है। तौबा कर ली उसने, तौबा कर ली उसने। तो ये फजूल खर्ची है, ये जो इतना ऐसा ये किया सब फजूल खर्ची है, इसका सिर्फ ईसाले सवाब है। तो मैंने अब मुफ्ती अब्दुल रऊफ सखरवी साहब से पूछा कि शबे बारात आ रही है, पहले समझ लें, दूसरों को भी बताएं कि क्या कब्रिस्तान जाना सुन्नत है? फरमाया जिंदगी भर में हुजूर अलैहिस्सलाम एक दफ़ा तशरीफ ले गए, आप भी एक दफ़ा चले जाइए। तो हम तो एक दफ़ा से ज़्यादा जा चुके हैं, सीरिया में कब्रिस्तान करीब था, दो चार साल पाँच साल छोड़ के कोई जाए तो हर्ज नहीं, तवातुर ठीक नहीं, तो इसलिए अब हम नहीं जाते, कभी मौका मिल गया चले भी जाएंगे हजरत फूलपुरी की खबर पर इंशाल्लाह। तो जाने से अल्लाह भी याद आता है, मौत याद आती है। लेकिन ये समझना कि बस कब्रिस्तान की जाने शब बारात की सुन्नतों में से ये कि कब्रिस्तान जाना, ये सुन्नतों में से नहीं है। और ज़्यादा आप ईसाल सवाब घर से बैठे हुए करें, वहाँ थोड़ी जाता, नीचे आओ, नीचे कोई जाता वहाँ पढ़ेगा तो नीचे जाएगा, ऊपर जाता है रूह को, वो मुसलमानों की रूह इलीजीन में होती है, सवाब ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर उस मुर्दे को जाता है। इस पर भी हकीमुल उम्मत ने फरमाया जो तुम ये सवाब पहुँचाते हो, ये देखिए एक आएंगे ना वो इमाम साहब, और इमाम साहब के जहर से उनका ये सब खाना बंधा हुआ है, तो जलाओ भाई थोड़ा सा निकाल के दो, हम इस पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम पढ़ के क्या कर रहे हैं, ईसाले सवाब कर रहे हैं, जितना खाना पका। जो आदमी ये खैर का काम करता था ना बज़ाहिर, उसने तौबा कर ली उसी वक्त, हकीमुल उम्मत की बातें हैं भाई। ये बताइए, ये जो आपने खाना पकवाया 10 दे गए हैं बिलफर्ज, ये थोड़े से पे आपने फातिहा कर दिया, फातिहा का ईसाले सवाब या अल्लाह इन सबका, जो गरीबों को खिलाया जा रहा है, और खिला खाते भी हट्टे गट्टे लोग हैं, मदरसे के लड़कों ने खा लिया तो बेहतरीन है, गरीब लोगों ने खा लिया, मजदूर गरीब आप तो बहुत अच्छा है, लेकिन खाने वाले कौन से हैं? बेहतरीन पार्टियाँ आ रही हैं खाने के लिए, तो एक तो ये, दूसरे ये चलो भाई मुसलमान है उसके खाने खिलाने पे भी सवाब मिलेगा। लेकिन आप जो ईसाले सवाब पहले कर रहे हैं, अभी तो ये उनके पेट में गया नहीं है, अभी जब उनको सवाब मिला नहीं है तो आप कैसे पहुंचा रहे हैं? सुभान अल्लाह, हमेशा के लिए तौबा कर ली उसने, तो उस खा चुके फिर हो सकता है, फिर होगा तो कौन रुकेगा उसके लिए, पहले फातिहा होगा, पहले कैसे होगा जब वो अमल नहीं, अभी अमल अभी पूरा नहीं हुआ है तो उसका सवाब कैसे पहुंचेगा? सुभान अल्लाह, तौबा कर ली। तो इसलिए ये सब कुरान और हदीस के करीब ना आने की वजह से उम्मत इस तरफ को भटक रही है, इस तरफ को भटक रही है, काश के थोड़ा सा करीब आए कुरान और हदीस के, सारे मसाइल आसान हो जाएं। तो हजरत अबूदर गफारी रजी अल्लाह तआला को आप अलैहिस्सलाम ने चंद नसीहतें फरमाई। रिजवान साहब आंख खोल के सुनो, आपको सोने का मौका दिया जाएगा, 9:30 बजे छुट्टी होगी, जाके सो जाना 10 बजे। हजरत अबूदर गफारी को बाद नसीहतें 7 भी हैं, यहाँ 3 हैं जो आज मुझे बयान करना है, और इसलिए कि मुख्तसर है, 7 नसीहतें हजरत वाला बयान फरमाते थे और अल्लाह ने इसको याद करवाया अपने साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी याद था, थोड़ा देख लेंगे फिर याद हो जाएगा। हजरत वाला इतनी दफ़ा बयान करते थे कि हजरत वाला भी बयान करते थे और हजरत फुरपुरी भी ऐसे बयान करते थे। अब जो दिन रात रहता है, तवारुद होता रहता है, वो बात जैसे आपके लिए मैं कर रहा हूँ, तो जो यहाँ बैठे रहते मौजूद रहते हैं, ये मौली फैसल हैं और फलाने फलाने 2-4 अक्सर रहते हैं, तो ये तो बार बार सुन रहे हैं ना, लेकिन कोई हफ्ते को आ रहा है, कोई बुध को आ रहा है, कोई जुमे के बयान में आ रहा है, इसलिए हम बार बार बयान करते हैं, बहुत से नहीं भी तो थे ना, लेकिन ये सुनने वाला 3 मरतबा सुन रहा है। तो हजरत हमारे हजरत बड़े ही जिसे कहते हैं अजीब अंदाज में फरमाते हैं, इसमें मज़ा भी है मज़ेदारी भी है, कि हजरत फूलपुर हजरत वाला फरमा रहे थे कि हजरत हमारे हजरत फूलपुरी इतना बयान करते हैं, यानी एक ही बात को बार बार इतनी तकरार करते हैं कि कहाँ तक याद ना हो, यानी कैसे याद ना हो, कैसे याद ना हो। तो इसलिए हजरत वाला भी हमारे हजरत वाला भी ये बदनिगाही का मजमून और बहुत सारी चीज़ें इतनी बयान करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह का शुक्र है अक्सर साथियों को याद है। तो बहरहाल हजरत अबूदर गफारी रज़ी अल्लाह तआला को आपने 3 नसीहतें फरमाईं, सबसे पहले तकवा का है, उसी का भी तकवल्लाह, उसी का मैं तुझे नसीहत करता हूँ तकवा की, अल्लाह से डरने की। अब ये तो यहाँ बात होती रहती है, इसकी ज़्यादा तफसील मकसूद नहीं है, दूसरे नंबर की तफसील ज़्यादा है। तकवा का एहतमाम, तकवा क्या है ये फिर समझ लेंगे। बहुत से लोग तकवा को मासूमियत और रात भर की तहज्जुद ये सब समझते, कभी गुनाह नहीं होना चाहिए। और तकवा वाला वो है जो रात भर तहज्जुद पढ़ता है, चलो 3 बजे उठ जाता है, 5 बजे 4 बजे उठ, नहीं नहीं ये सब ज़रूरी नहीं है। कोई ईशा फजर जैसे पढ़ लिए, अब फजर जमात से पढ़े ये भी मुत्तकी है इंशाल्लाह, अगर कोई गुनाह ना करे। अब ये पढ़ के गया और जाके मोबाइल में लग गया गंदगी में, ये गुनाह है। गुनाहगार जो है वो मुत्तकी नहीं है, ये फ़र्क है। बदनिगाही करने वाला, बदज़बानी करने वाला, वालदेन का नाफरमान, इसमें बहुत तफसील है। गुना कोई दो चार तो है नहीं, गीबत करना, चुगली करना, गीबत करना जितना बड़ा गुना है, सुनना भी इतना बड़ा गुना है। अच्छा आपने बहुत सही बात कही, ये तो मुझे आपने जो राज आउट किया है मुझे भी डाउट था, फौरन काफिया हजरत वाला लगा देते, मुझे भी ये डाउट था बिल्कुल, मुझे तो पता ही नहीं था इतना ख़राब आदमी है। अब क्या हो रहा, सुना भी और कर भी रहा है, और दोनों गीबत करके अल्लाह से दूर हो गए। तो जो इन सब चीज़ों से बचता है, इन गुनाहों तमाम गुनाहों, ये मुत्तकी है। अच्छा बचता है मुत्तकी, फिर कभी हो गया क्या होगा, हमेशा के लिए तकवा टूट जाए, इतनी देर के लिए टूटेगा जैसे वुजू टूट जाता है, फिर वुजू कर ले, तकवा टूट गया दोबारा से तौबा करे, या अल्लाह मुझसे सख्त नालायकी हो गई, और उसके हक़ में ईसाल सवाब करे, जिसका जिसकी गीबत की है या जिसका नुकसान पहुँचाया उसको अदा करे, किसी का माल चुराया उसको दे, सब अहले इल्म से पूछ ले कि तौबा के तरीक़े क्या हैं। अब ये तौबा करके दोबारा मुत्तकी हो गया, अब इसको कहना ये जायज़ नहीं है कि ये इसने फला गुना किया था फलाने सन में, फर्स्ट ईयर में इसकी ईयर निकली थी, ये गलत, फर्स्ट ईयर का मसला अलग है। हजरत वाला फरमा दे, मत करे तहकीर कोई मीर की, राबता रखते हैं अब अल्लाह से, खूब रूयों से मिला करते थे मीर, अब मिला करते हैं अहलुल्लाह से। जब जवानी थी, नौजवानी, और मीर थे, यहाँ मीर साहब मुराद नहीं, मीर साहब की जवानी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी, ये एक मीर तो मेरा एक किरदार है, हर जगह इस मीर को मत समझ लिया करो, जहाँ अच्छा है वहाँ ज़रूर गुमान करे आदमी, लेकिन हर जगह नहीं। मीर मारे गए डिस्टम्बर से, अब गए मीर साहब को हजरत वाला जानते हैं कि ये गलत नज़र करते हैं, मीर मारे गए लाहौर में, हजरत ने शेर फरमाया था, मीर मारे गए डिस्टम्बर से, वरना मिट्टी की हकीकत क्या थी, वरना मिट्टी की हकीकत क्या थी। तो जो कुछ हुआ पीछे हो गया ना, अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। आज जो सच्ची तौबा कर ले वो आज से अल्लाह का महबूब है, चाहे 3 दिन बाद फिर गुनाह हो जाए, 3 दिन तो ज़्यादा है, यहाँ से उठ के जाने के बाद फिर गुनाह हो जाए, फिर भी तौबा इंशाअल्लाह अल्लाह का महबूब है। और जितनी देर के लिए वो गुनाह करेगा इतनी देर के लिए उसकी उसका तकवा ज़ायल हो जाएगा, इतनी देर के लिए, उसके बाद फिर जब वो सच्ची तौबा कर लेगा फिर वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। हज़रत ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस जुमला इस्मिया से नाजिल किया, इन्नल्लाह युहिब्बुत्तवाबीन, ये अहले इल्म समझेंगे, मुहिब्बुत्तवाबीन नहीं फरमाया, युहिब्बुत्तवाबीन फरमाया, कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों को महबूब बनाते हैं और बनाते रहेंगे जब तक वो तौबा करते रहेंगे। टूट जाए फिर जोड़ लो, बर्तन टूट जाता है आदमी जोड़ लेता है, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो गाढ़ा लगाने में हम लोग मशहूर हैं पाकिस्तान वाले, टूट जाए फिर जोड़ लो, लेकिन बचने की कोशिश करे, जान के कोई भी गटर में नहीं गिरता, लेकिन गटर में गिर गया तो फौरन निकल के नहाए, जब नहा लिया फिर साफ हो गया, ये नहीं गटर में गिर के जो है खुशबू सूंघ रहा है गटर की, ये बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ तो, वो पहले तो आए नहीं, मुझे पहले आता तो पता चलता, तो बहुत देर से गिरा मैं इसके अंदर। ये है गुनाह क्या है, जैसे ये ज़ाहरी गंदगी, गुनाह बातिनी गटर है, उसमें जाके आदमी अगर जिसे कहते हैं बिल्कुल ऐसा हो गया, और करीब करीब आइए, ये सब लेट लतीफ़ लोग आ रहे हैं, सारे लेट लतीफ़ लतीफ़ अब्दुल लतीफ़ तो आए नहीं, क्या करें, वो भी लतीफ़ है। तो तकवा, तकवा नाम है बचने का, किससे, गुनाहों से, डरने का अल्लाह से, जैसे डरना और बचना एक ही चीज़ है, कि जब आदमी अल्लाह से डर रहा है तो गुनाह से बचेगा। हज़रत उमर से, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उबै इब्ने काब से पूछा रज़ी अल्लाह अन्हु, तकवा क्या है, अबू उबै इब्ने काब बताइए, हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन होके पूछ रहे हैं, क्योंकि वो बड़े आलिम थे। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन, क्या आप कभी खारजार से गुजरे, खारजार दोनों तरफ कांटे हों, और उस जमाने में आम होते थे, अब तो कम हो गए, अभी भी गांव गोठों में अब भी होता है। फरमाया, हाँ गुजरा हूँ। अर्ज किया, कहा कि उससे आप कैसे गुजर देंगे? दामन को बचा के जितना कम से कम लगे, इसी का नाम तकवा है। गुनाहों का हर तरफ माहौल है, इससे जो दामन को बचा के गुजर रहा है, ये तकवा से रहना। तो बचने का नाम तकवा है, रात भर तहज्जुद पढ़ने का नाम तकवा नहीं। ये इबादत गुजार है, पढ़ना चाहिए, इससे मना नहीं किया जा रहा है। रात भर तो खैर मना किया जाएगा, 3 बजे नहीं, 4 बजे, 5 बजे आदमी उठ जाए, 5:15 बजे उठ जाए, आँख खुल जाए। फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना हमेशा हो, जब आँख खुल जाए। हकीम उम्मत को लिखा हो, ये 100 साल पहले की बात, कि तहज्जुद नहीं हो रही है, बड़ी परेशानी है। फरमाया, गुनाह पे परेशान हो, नफिल छूटने पे परेशान ना हो, कोशिश करो कि आइंदा हो जाए। परेशानी सिर्फ गुनाह पे होनी चाहिए। एक साहब ने लिखा कि 1 साल पहले, अब सुनिए यार, हमारे दोस्तों के लिए ताजियाना है, कैसे कैसे लोग गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह, उन दोस्तों के लिए जो रोजाना मसबूक बने खड़े रहते हैं। 1 साल पहले तकबीर उला निकल गई थी, पहली रकत, अभी तक उसका गम है। हजरत बस क्या करें, अब हजरत का जवाब सुनिए, ये इतना ज्यादा गम करना भी ठीक नहीं है, बस तौबा कर ली, माफ हो गया, खत्म। उनको इतना गम है, हमारे आए दिन मसबूक गम बनते रहते, दूर से आ रहे हैं तो पहले से आओ भाई, पहले से आओ ताकि तकबीर उला मिल जाए। मैं कहता हूँ तुम्हें अल्लाह की खुशी नहीं, शेख को ही खुश कर लो, शेख को खुश करना भी अल्लाह को खुश करना है। शेख देख रहा है आप आ रहे हैं आराम से, आराम आराम से आके सुन्नत पढ़ रहे हैं, जब शेख जो मसल्ले पे खड़ा हो रहा है सुन्नत पढ़ रहे हैं, महल्ले में रह के ये हालत, तो आप इतनी बड़ी रात है 5 मिनट पहले नहीं आ सकते। बस वही एम वही बनाया हुआ ना कि हमें जमात में पहुँचना है, और जमात में पहुँचना है और उसमें चलो 2 मिनट में सुन्नत पढ़ लेंगे, इतने तो किरात होती है, पहले क्यों नहीं पढ़ते, घर में पढ़ लें, नहीं तो यहाँ आके पढ़ लें, दोनों सही है। तो तकवा का एहतमाम तो अक्सरों को पता भी है। दूसरे नंबर पर फरमाया, इदा असातफ अहसन, इदा असातफ अहसन, ये मशहूर रिवायत है, इदा असातफ अहसन, जब तुझसे कोई गुनाह हो जाए तो कुछ नेकी कर लिया करो। अब ये भी देगी, ये भी समझने की ज़रूरत है। तो आदमी कहे अच्छा है गुनाह करके नेकी कर लो फौरन, तो फौरन नहीं, गुनाह हो जाए नेकी क्या, तो ये तौबा, असल तौबा नेकी, और फिर 2 रकअत सलात तौबा पढ़ लिया तो ये और नेकी होगी। जो गुना हुआ था ना, शैतान ने थोड़ा गुना कराया और हमने 10 रकत पढ़ लिया, 8 रकत पढ़ लिया, बाद में शायख बताते हैं एक बदनिगाही पर या एक कोई झूठ बोल दिया, जिसको झूठ बोलने की आदत है, जिसको गीबत करने की आदत है, उसको जवाब दिया, एक गीबत हो जाए 10 रकत नफिल पढ़ो। अब गीबत होगी 10 रकत नफिल पढ़ रहे हैं, उसको इसाले सवाब भी कर रहे हैं, अब नफ्स और शैतान दोनों मुतासर होते हैं, हमने तो थोड़ा सा गुना कराया, इतनी देर तक ये अल्लाह की इबादत कर रहा है, आइंदा गुना छूट जाएगा। फिर ये भी जहन में रहेगा कि हमने ये गुना कर लिया तो ये शेख का बताया हुआ अमल करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये तो इससे क्या है, जब जब कोई गुना हो जाए कोई नेकी कर ले। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, इन्नल, ये कुरान करीम, हसनात और नेकियां गुनाहों को मिटा देते हैं। युज़हिब का आप देखें, बिल्कुल युज़हिब का मतलब मिटा देना, ले जाती हैं गुनाहों को मिटा देती हैं, हसनात गुनाहों को मिटा देते हैं। लेकिन हसनात उस मौके पे क्या है, अब देखिए, बिलफर्ज किसी ने नमाज छोड़ दी, ठीक है नमाज छोड़ दी और 500 रुपये नहीं 5,000 रुपये सदका कर दिया, अब ये नेकी उसका बदल बदल हो सकती है? किसी ने 5,000 किसी के चुरा लिए और 10 नहीं 20-50 नफिल पढ़ लिया, ये उसका बदल नहीं हो सकता। ये भी पूछना पड़ेगा कि नेकी, उस गुनाह के बदले में नेकी कौन सी करनी है, उस गुनाह के बदले में ये नहीं चलेगा। रोज़ा छोड़ दिया, कहते मैं रात भर तहज्जुद तरावी पढ़ूंगा, रोज़ा मुझसे नहीं रखा जाता, नेकी करो, गुनाह किया ना नेकी करके बराबर नहीं, बराबर नहीं होगा उसका, तो वही उसको तो कज़ा रोज़ा रखने पड़ेंगे। इसीलिए इसको समझने की ज़रूरत है, हर हर काम खुद से नहीं समझ सकता। आम तौर पे लोग यही समझते हैं कि नमाज से तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं, हम करते भी हैं हम कमज़ोर हैं, ये माफ़ हो जाते हैं नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और बचने के अहतमाम की ज़रूरत। फिर जो हो जाए, फिर जो कम भी होगा, फिर जो हो जाए उस पर ये है कि उस पर आदमी गुनाह हो गया फ़ौरन, अब मगरिब के बाद आदमी पढ़ता उसमें सलात तौबा की नीयत कर लिया, या अल्लाह माफ़ कर दीजिए आज मुझसे आपकी नाफरमानी हो गई, मुझसे नालायकी हो गई, माफ़ फरमा दी, तो माफ़ हो जाएगा। ये है इसका इसका सही सही मतलब कि जब तुझसे कोई गुनाह हो जाए कोई नेकी कर लिया कर, तीसरा कलमा पढ़ लिया ठीक है, दो पहले तौबा कर लिया, फिर 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ लिया, बाकियातुस सालिहात, सूरह कहफ की तशरीह चल रही है सुबह को, बाकियातुस सालिहात, अक्सर सहाबा ये लिखते हैं बाकियात, तीसरा कलमा बेहतरीन बाकियातुस सालिहात, बाकी रहने वाली नेकियां ये हमेशा बाकी रहेंगी, ये माल ये गाड़ियां सब खत्म हो जाएंगी, ये नेकियां हमेशा बाकी रहेंगी, नेक औलाद, बाकियातुस सालिहात में नेक औलाद, हम चले जाएंगे, हमारी औलाद कुरान सुना रही है, मुसल्ला सुना रही है। उसी तरह और भी खिदमात दीन की, और हजरत वाला चले गए, देखिए मौलाना उनके बेटे, उनके पोते, हजरत के पोते नवासे सब दीन में लगे हुए माशा। तो ये सब एहसान सवाब वहाँ जा रहा है नहीं जा रहा। तो ये भी बाकियात सालिया, कोई मदरसा मस्जिद बनवा दे या उसमें हिस्सा ले ले। दरमियान में बात आ गई तो बता देता हूँ, सोलर सिस्टम में हिस्सा लेने का मौका मौजूद है, क्या ऐलान भी हुआ है, इसलिए कि हमें जल्दी लगवाना है, क्योंकि वो कुछ सुना है सस्ता हुआ हुआ है, फिर महंगा हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा तो हो सकता है महंगा हो जाए। तो बहरहाल जो चाहे उसमें हिस्सा, हर आदमी समझता है नहीं 5 लाख तो बहुत ज़्यादा मेरे पास कहाँ है, 5 हज़ार दे सकता है, 1 हज़ार दे वो भी हिस्सा ले। तो जो ऐसा हिस्सा लेगा किसी काम में, मस्जिद में या मदरसे में या गरीब को दे के, सदक़ा जारिया में, ये गरीब को देना सदक़ा जारिया नहीं है, सदक़ा जारिया में, और वो जब तक वो बाकी रहेगा उसके निशानात, उसको सवाब मिलता रहेगा। एक तालिब इल्म का आपने इतने हिस्से ले लिया, जिम्मे ले ली, यहाँ भी एक तालिब इल्म की तनख्वाह, तनख्वाह से मुराद उसकी फीस, तनख्वाह का तर्जमा पता है आपको, तनख्वाह, तन जो चाहता है, आपने मेहनत की ना, तन यानी जिस्म ने मेहनत की, अब खा क्या है, ये पैसा, तनख्वाह ये है असल। तो जो आम तौर पे हमारे जो फीस है 2 हज़ार है, बाद मदरसों में जो रिहायशी हैं 5-5 हज़ार उनके, तो एक तालिब इल्म को हमने ले लिया, वो तालिब इल्म बन गया, आलिम बन गया अल्लाह वाला, अब उससे जितना दीन फैलेगा सब हमारे खाते में लिखे हो जाएंगे। ये है सदक़ा जारिया बेहतरीन हैं। बहुत से लोग खुद कहते हैं कि तालिब इल्म की किताबें हो ना हमें बताना, हम ज़रा किताबों के पैसे दें, ये होशियार लोग हैं कि किताब हम दिला देंगे, पढ़ेगा साल भर वो, दिमाग तो वो खपाएगा, सवाब इनको मिलेगा, किताब इसने दिला दी। ये कितना आसान है दीन पे, बताइए कितना आसान है दीन पे अमल करना, कोई मुश्किल नहीं। तो बाकियात सालिहात ही हैं। तो ये कोई ऐसी नेकी कर ले, और लेकिन बता रहा हूँ कि नेकी वैसी होनी चाहिए उसके अलावा, एक एक का दूसरे से ताल्लुक नहीं होगा, एक का दूसरे से ताल्लुक नहीं होगा जब वो आपस में टकराव हो रहा हो। हाँ ऐसे ठीक है कि आपने कभी किसी को, अब किसी को कोई बात, बिल्कुल ये भी एक तरीका है, किसी को कोई बात कही बुरी लगी, पहले माफ़ी मांग लिया, अब उसको कोई हदिया भी दे दिया, अब वो खुश हो गया, इस पर भी नेकी मिली। जी वही इज़ा असअत फहसन, जब तुझसे कोई बुराई हो जाए तो फौरन नेकी कर ले, और देर न करें तौबा में। हजरत फरमाते बाद लोग जमा करते हैं, खूब हो जाए ना अभी, फिर बाद में जब शादी हो जाएगी, बाद शादी हो जाएगी उसके बाद तौबा करेंगे। शादी वाले कहते हैं जब बच्चियों की शादी हो जाएगी ना फिर तौबा करेंगे, बुढ़े हो जाएंगे जब, इतना रहता ही नहीं आदमी, आड़ाम दड़ाम जाना पड़ जाता। तीसरी बात आपने फरमाई, ए सो रहा है क्या, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी कमी हमारे अक्सरों के अंदर है, यहाँ पे नहीं, यहाँ सब बाशरा हैं, अखलाक को दुरुस्त करो, अपने अखलाक को मुजयन करो। बा अखलाक जितने, जिसके हुस्न खुल्क जितना ज़्यादा होगा क़यामत में मुझसे ज़्यादा करीब होगा। अखलाक को दुरुस्त करो, अखलाक बज़ाहिर हम मर्द हैं, हमारी दाढ़ियाँ हैं, पैंचे ऊपर हैं, बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक मूछें बारीक हैं, दाढ़ी पूरी है सब, लेकिन अंदर के अखलाक कैसे हैं, जाके बीवी से कैसे बात करते हैं, उसको ऑल फॉल सुना रहे हैं, उससे इतना ज़्यादा काम ले रहे हैं, इसी तरह दोस्तों में गालियां दे रहे हैं, किसी से लड़ाई हुई गालियां दे रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं। बदनिगाही करना भी बद अखलाकी है, ये समझे, निगाह को गलत इस्तेमाल करना खयानत है, ये बद अखलाकी है। तो अखलाक का दुरुस्त करना, अखलाक का दुरुस्त का सिर्फ ये नहीं है कोई आ जाए तो चाय पिला दिया आपने, सिर्फ ये नहीं है, ये एक इसका शोबा है, लेकिन अखलाक सारे उस पर है। गुस्सा आए तो गुस्से को पीना है, गुस्से पर अमल नहीं करना है, गुस्सा आएगा उस पर अमल नहीं, ये अखलाक। हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह ताला इस पर बहुत जोर देते थे, अल खल्क आयालुल्लाह, पूरी की पूरी खल्क अल्लाह की आयाल है। आयाल का मतलब अक्सर लोग, आम लोग भी समझते हैं, वजह क्या है, कार्ड पे लिखा रहता है माँ आहलो आयाल, ये पूरा अरबी है। देखिए मैं तफसीर में बाद बता रहा हूँ कि देखिए ये लफ्ज अरबी, बाकियात क्या कहते हैं, तुम्हारी कितनी बाकी है क्या, ये उर्दू तो है, सालेहात भी, सालेहात भी बना तो सालेहात, सालेहात मदरसा होता है बना, और आप देखें कितने अल्फाज उर्दू के होते हैं, कितने अल्फाज उर्दू होते हैं, ये लफ्ज़ भी उर्दू का है, यानी उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो माँ अहलो आयाल क्यों आज बोला जाता है हमारा, क्योंकि पहले ज़माने में लोग इसको समझते थे, अब लिखते हैं विद फैमिली, अब माँ अहलो आयाल को नहीं, अब विद फैमिली इसका तर्जमा है, विद फैमिली समझते हैं, माँ अहल वयाल नहीं, आयाल का मतलब खानदान है। तो खानदान किसका होता है, जैसे एक एक सरबरा होता है, पांच बेटे हैं, तीन बेटियां हैं, पहले जमाने की बात है, अब नहीं होते, अब बहुत कम होते। और उसके साथ ये सरबरा है ना, उसका ये पूरा खानदान है। अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया, सारी मखलूक अल्लाह की खानदान है। अल खल्कु आयालुल्लाह, अल खल्क फरमाया, अल मुमिनीन नहीं फरमाया, ईमान वाले मेरे आयाल हैं पूरी की। इंसान को भी बिला वजह, किसी काफिर को भी बिला वजह तकलीफ ना दो। जिहाद हो रहा है ना, जाके शहीद करो, ये ठीक है, जो लड़ रहा है उसको पकड़ के बंद करके हब से बेजा में मत रखो जिससे तकलीफ पहुंचे। छिपकली को मारो, मगर बच्चों की तरह उसके गर्दन में रस्सी बांध के उसको ले लेके फिरो मत। सांप को मार दो, लेकिन सांप छोटे सांप को बांध लो, रस शीशी में बंद कर देते हैं, अब तमाशा दिखा रहे हैं, अब पता नहीं उसके क्या उस पर गुजर रही है। तो ये सब तमाशे मत करो, मार दो। सांप को मारना चाहिए, छिपकली को मारना सवाब है। छिपकली को मारना और गिरगिट को मार, इसीलिए तो बच्चे करते हैं सब। मैंने पढ़ा तो मुझे हैरत भी, क्यों सवाब है, बस उसके कुछ तौजीहात हैं, सही हो या गलत, बस सवाब है, आपने फरमा दिया सब। अच्छा, इसमें भी एक बार में जो मारेगा सबसे ज्यादा सवाब, एक बार में, दो में कम, तीन में और कम, क्योंकि तड़पाना पसंद नहीं है। देखिए कैसा इस्लाम है बताइए, जानवर को भी मार, क्योंकि वो ऐसा है जानवर। इसके इसके फवायद क्या है, ये तो अल्लाह ताला जानता। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, कोई ना कोई फायदा है हर चीज का, हर चीज का फायदा है, लेकिन क्या है ये अल्लाह ताला जानते। तो बनाया भी है, मारने का भी हुक्म दे दिया, मारने का भी हुक्म दे दिया। खटमल को भी मार देना चाहिए, खटमल को जहां नजर आए खटमल वहीं फौरन झटमल, मुफ्ती रशीद अहमद साहब फरमाते। हाँ, एक आलिम ने बयान किया इसको कि जो खटमल को जाता हुआ छोड़ दे तो उसका जहन कमजोर हो जाता है। अब ये किससे रिवायत ली है हमें खुद नहीं पता, लेकिन खटमल को बिला वजह छोड़ने से और पैदा हो जाएंगे, इसलिए उसको मार दे। इसी तरह छिपकली को और ऐसे सांप को बिच्छू को मारना चाहिए, लेकिन मारे तड़पाए नहीं। गाय को ज़िबा रोज़ाना किया जाता है हमारे, अल्लाह का शुक्र है मुसलमान है, मुसलमानों के शायर में से गाय का ज़िबा करना, गाय भैंस बकरे रोज़ाना ज़िबा होते, ज़िबा करना है। छुरी तेज हो, छुरी तेज हो, कुंद ना हो, ज़िबा करो, ऐसे तकलीफ ना दो उसको, तकलीफ ना दो। आपने देखा एक सहाबी नया नया इस्लाम था, उसमें पैर रखे हुए छुरी तेज कर रहे हैं, उसको रिटायर हुआ पैर रखा हुआ है ताकि वो, आपने फरमाया तुम उसको दो दफ़ा ज़िबा क्यों कर रहे हो, दो मौतें क्यों दे रहे हो, जो करना है जल्दी करो। कितना प्यारा इस्लाम होता है। और बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम लोगे तो हलाल हो जाएगा, वरना हलाल भी नहीं होगा, हराम हो जाएगा। जो जान के अल्लाह का नाम ला ले वो जबिया हराम, मुफ्ती लोग बैठे हैं पूछ लीजिए, जान के भूल जाना मुस्तस्ना है। इसीलिए आप जब चिकन जाएं तो उसको बताएं भाई जोर से पढ़ना बिस्मिल्लाह अल्लाह, पढ़ते भी हैं मौलवी को देख के पढ़ते भी हैं, लेकिन आमतौर पर जब वो मुंह में गुटखा होता है ऐसों को कहाँ से पढ़ेंगे वो, बताइए, सारे हराम हो जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है, अजीब मामलात कि इतना बड़ा आदमी काम कर रहा है और अजीब अजीब हालात। तो लेकिन वही बता रहा हूँ कि अब ज़िबा करें लेकिन उसको तकलीफ ना पहुंचाएं। तो अल खल्क आयालुल्लाह, पूरी की पूरी खल्क अल्लाह की आयाल है। फ़अहब्बुल खल्क इलल्लाह, बस अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा वो है, महबूब वो है, मन अहसना इला आयालिही, जो उसकी आयाल के साथ बेहतरीन ताल्लुक रखता है। और इसीलिए दूसरी जगह भी फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लि अहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल आयाल के साथ, अहलिया के साथ बेहतर है। खास वहाँ क्योंकि अखलाक का पता चलता है ना, बाहर तो बाहर अगर हम किसी को डांटेंगे वो हमें और डांटेगा, हम किसी को मारेंगे वो चार दोस्त ला के मारेगा। एक हमारे अजीज हैं, वो ऐसे ज़रा होता है तहरीक वहरीक में, उसको किसी ने कह दिया ओ सूखे सड़े दुबले, कोई ऐसे गाली भी नहीं दी उसे, अच्छा जाके इतना मारा उसको, मार मार के बेचारे को जख्मी कर दिया यानी। अब वो फिर लेके आया चार गुंडों को उसके घर, वो घर पता किया उसने, चार गुंडों को खूब मारा। मैं उसकी आयादत करने गया था, मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ यहीं बराबर हो गया, क्यों मारा तुमने उसको भाई, सुनते हैं बात, क्यों मारा, उसने क्या कहा था, जितना उसने कहा तुम भी कह ले तुम सूखे सड़े हो गए। जितना अगर कोई जुल्म करे ना इतना करने की गुंजाइश है, लेकिन आदमी वही इतना करके रुकता नहीं, उसने कितनी पिटाई लगाई इतना कह दे तुम सूखे थोड़े हो गए, इतना ये भी नहीं कह तुम्हारा बाप सूखा थोड़ा, ये भी जायज नहीं होगा। इसीलिए उल्लू खाया था उल्लू कह सकते, उल्लू का पट्टा नहीं कह सकते, क्योंकि उल्लू का पट्टा तुमने बाप को कह दिया उल्लू मेरे, हैं ये कैसे जायज होगा। जितना उसने, इसीलिए हजरत फरमाते थे माफ कर दो, क्योंकि बदला कभी बराबर नहीं होता, हमेशा शेर का जवाब सवा शेर से, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। इसलिए माफ कर दो ताकि माफ करने पे अल्लाह ताला हमें माफ कर देंगे, माफ करने पे अल्लाह ताला हमें माफ कर देंगे। करो मेहरबानी तो महले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। खाने में मजा ना आए खा लो चुप से, और मजा आए तो खूब तारीफ भी करो, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाए, बहुत अच्छा बना है। बीवी के तो हाथ भी चूम सकते हैं ना, वो कहता था मिजा हमारा मिजाइया फनकार कि तूने इतना अच्छा खाना बनाया तेरे हाथ चूम लो अगर धो के आ जाए, इस गंदी हालत में तो मैं भी नहीं चूम सकता। तो कभी उसको इनाम दे दे, बीवी को बच्ची को इनाम दे दिया खुश हो जाएंगे। हमारे अकाबिर भी वाजिया खाना खाते थे, अब उस जमाने में 100 रुपये क्या था, अभी ये 100 रुपये कोई दे दे दिल हौसला अफजाई होती, उसको संभाल के रखती हैं औरतें कि भाई मुझे इनाम मिला, तो ऐसा कभी कर लेने में हर्ज भी नहीं। तो कम से कम तारीफ तो कर दे, माशाल्लाह बहुत अच्छा पकाया। अब वो बेचारी दिन भर लगी रहती, हमने करके जजाकल्ला अच्छा बनाया, अल्लाह ताला ने आपके हाथ में जायका दिया, खुश हो जाएगी। तो और कोई ऐसा हो जाए नमक ज़्यादा पड़ जाए, बाद दफ़ा दो दफ़ा नमक पड़ जाए, तो कड़वी कसीली ना सुनाए, नक नहीं खाया गया छोड़ दे। सुन्नत ये कि आपसे जब कोई खाना नहीं खाया जाता आप छोड़ देते, उसकी बुराई ना करते और ना खाने पकाने वाले को हमारी तरह वो करते जद्दों को ऐसा क्यों पकाया सारा हमारा पैसा ज़ाया कर दिया। तो हल अखलाक को दुरुस्त करना ये हमारे यहाँ बहुत कमी है। मस्तूरात भी आती हैं हफ्ते के दिन, आप लोग भी ला सकते हैं, अक्सर बेचारे ऐसे दबे हुए हैं कि ला ही नहीं सकते, बाज़ों के पास तो है ही नहीं, वो बेचारे छड़े फिर रहे हैं, उनको छड़ी की ज़रूरत है। अब जो छड़े फिर रहे हैं उनको छड़ी की ज़रूरत, और जो शौहर हैं वो बेचारी शौहर नहीं बीवी ज़्यादा हैं, शौहर कम है, बीवी को ला नहीं सकते किसी। आप हफ्ते में पूरे हफ्ते में 3 मजलिस हैं, 1 मजलिस में ले आओ लेकिन चलती नहीं सुनती नहीं, 2-4 दफ़ा लाए फिर वह ढीले पड़ गए। तो यही बात जो हमारे अंदर है ये अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है सरापा, अक्सरों का दोस्त का ऐसे ही। यही बात औरतों में है, बुरका बेहतरीन। आप देखिए जहाँ जैसे जो जितनी भी निकलेंगी सब बुरके वाली हों, आप देखना भी चाहें तो कोई नज़र नहीं आएगी, बिला वजह टाइम ज़ाया करेंगे। लेकिन यही जब घर में जाते हैं अखलाक का जनाजा निकल जाता, ये आने का टाइम है तुम्हारे, ये तुम्हारे तुम्हारे शौहर कह रहे हैं तुम्हारे, तुम्हें इतना नहीं पता कि शौहर को आप जनाब से बात करते हैं। इसी तरह और भी गुस्सा आ गया तो कुछ याद नहीं रहा, तो ये बहुत ही बड़ी खराबी हो, अखलाक की खराबी, अखलाक की खराबी। यहाँ तक फरमाया कि बगैर इजाजत के शौहर के बीवी रोज़ा भी ना रखे, नफिल नमाज भी ना पढ़े। अगर उसको पता है कि इशराक में पढ़ रही हूँ, शौहर को नाश्ता चाहिए, तो बाद में पढ़ ले, इशराक का वक्त क्या महदूद होता है, इशराक जवाल से पहले तक पढ़ सकते हैं, यह इतना बड़ा वक्त है। तो ठीक है वो चाश्त हो जाएगी लेकिन नमाज तो हो जाएगी ना, नफिल तो हो जाएगी, नफिल तो हो जाएगी। तो शौहर की अगर पता है कि शौहर के जाने का वक्त है तो उस वक्त में इशराक भी ना पड़े। सहाबी ने आपसे पूछा आके, आपसे शिकायत की कि मेरी अहलिया अक्सर रोज़ा रखती है, मुझे मुशक्क़त होती है इसी काम की वजह, कोई मुशक्क़त का काम बताना ये मुशक्क़त, या उसको अपने पास बुला रहा है उसमें ही मुशक्क़त हो रही कि ये मुझे ज़रूरत थी और ये तो रोज़ेदार साहिबा पीरानी साहिबा बनी हुई, तो उसको आपने मना फरमाया। कोई औरत बगैर शौहर के इजाज़त के रोज़ा ना रखे, इजाज़त ले ले पता रहे भाई रोज़ा, अगर बिलफर्ज वही उर्फी इजाज़त भी पीर जुमेरात को कोई रोज़ा रखते हैं ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। तो इतना जहाँ पे हकूक बतलाए वहाँ पे लड़ने को अपना हक समझा जाता, यही अखलाक का जनाजा है, यही अखलाक का जनाजा। अभी मैं जब अंदरून सिंध गया था मदरसों में, मदरसतुल बयानात बनात में बयानात हुए, वहाँ मैंने यही अर्ज़ किया कि अक्सर आने वालियाँ सब बापर्दा हैं माशाल्लाह, पर्दे की बयान की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो घरों में थोड़ी बेहतियाती होती है, बहनों ही चलाया तो वहाँ एहतियात करें, दूसरे इस पर्दे की जो हमने दीनदारी का खोल ओढ़ रखा है अंदर भी हो के दूसरे का एहतराम हो, दूसरे का एहतराम, जैसे बाप की इज्जत है वैसे ही उससे बढ़ के शौहर की इज्जत। बाप की कोई भी पढ़ी लिखी लड़की कोई भी बाप की बेइज्जती नहीं करती बुरा बुरे अल्फाज से, लेकिन शौहर का शौहर से लड़ना ये उसको हक समझा जाता है। शौहर से लड़ना खासकर मदरसों में बयान करता हूँ, आलिमा जो है वो और ज्यादा पढ़ी होती है, हमने ये मसला पढ़ा है, ये क्या आम ही आदमी है, ये क्या जाने, आवाम का ला नाम, ये तो जानवर की तरह, इसको क्या पता कि और खतरनाक है। चाहे कुछ भी है, शौहर होने के नाते वो तुमसे अफजल है, तुम आलिमा हो, शौहर होने के नाते वो तुमसे अफजल है, तो उनको भी चाहिए अपनी इसलाह करवाएं और शौहर को शौहर समझें, वहां पे अपने इल्म का खन्नास एक तरफ रख दें। मुझे तो इससे, हमारे अकाबिर को भी इससे मुनासिबत नहीं, इतना होना चाहिए 2 साल का कोर्स, ये मैं अब कोई इसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, 6-6 साल पढ़ा रहे हैं और उसमें भी एहतियातियाँ तो इतनी हैं कि मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह ताला ने आखिरी उम्र में फरमाया था, अब वो चीज़ पता नहीं जारी हुई या नहीं हुई, मुश्किल है, कि जब जिन मदरसों में सिर्फ औरतें नहीं पढ़ाएंगी, हम उनको विफाक से इल्हाक नहीं करेंगे। औरतें तो पढ़ा सकती हैं, फिर भी होता है, फिर लेकिन फितने भी इतने हैं, बेएहतियाती इतनी है, बेएहतियाती इतनी। तो मौलाना सलीम अल्लाह खान साहब ने फरमाया था ये गैर मर्द से पढ़ना, तो 6 साल पढ़ो, 6 साल, 2 साल का कोर्स काफ़ी है, बहिश्ती जेवर तालीमुद्दीन, और ठीक है उसमें तो 2 साल में तो अरबी भी आ जाएगी, कुछ ना कुछ अरबी भी आ जाएगी, इसको समझने का हो जाएगा, 6-6, 8-8 साल, तो उसके बाद क्या होता है, वो समझती है हम तो इतने बड़े आलिम हैं, और कामिल कोई नहीं होती कि पढ़ाने के लिए ढूंढो तो औरत मिलती नहीं है, ये बड़ा मसला है, फलाने की बीवी आलम है फलाने की, तो भाई पढ़ाओ ना, नहीं पढ़ा नहीं सकते, यही वजह है। मैं कहता हूँ ये इन हलकों में बैठने वाला हमारा सूफी दोस्त उस आलमा पे भारी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये मसाइल जानते हैं, इजरा भी करते हैं, वहाँ इजरा नहीं होता ना, ये भी मसला है, मसाइल पे जो इजरा होता है तब जारी किया जाता है, उसको बरता जाता है, तब वो फ़ायदा होता है। बहरहाल हम इसको बुरा नहीं कह रहे हैं, कोई इससे ये फ़ायदा तो हुआ, बहुत सी आम ख़वातीन जो बुरका भी नहीं पहनती थी, जो फ़ायदा है वो है अपनी जगह, बुरका नहीं पहनती थी, मदरसे जाके सबसे पहले बुरका शुरू कर दिया, फिर दीन की मालूमात हुई, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन उसी को मखसूस समझ लेना और फिर उसमें इतना करना कि दूसरे को हकीर समझना, शौहर गैर आलिम उसको हकीर समझ, हर गैर, क्योंकि एक मन इल्म के लिए 10 मन फहम की ज़रूरत होती है, और यहाँ एक मन इल्म के साथ 10 किलो फहम भी नहीं है 10 मन यहाँ 10 किलो फहम, फहम की कमी होती है औरतों में, आधी अकल क्यों फरमाया, क्यों शरीयत मना करते, शाना बशाना कैसे हो सकता है, 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है, तो अकल और फहम में कमी है, नक्स है, तो कैसे इतना बड़ा जखीरा वो कैसे उठा सकती, उसके लिए तो वही 1-2 साल का कोर्स काफी था। आए दिन घरों में ये हालात हैं, आए दिन पढ़े लिखे दीनदार घराना, बार बार अफसोस होता है कहते हुए कि 50 साल के आदमी और बड़े बड़े जवान लड़के तलाक दे दी अपनी बीवी को, और ऐसे जितने भी हों वो ये समझते हैं कि हमें दूसरी मिल जाएगी, जिंदगी गुजर जाती दूसरी नहीं मिलती, पहली यहाँ इतनी मुश्किल से मिलती है, दूसरी कहाँ से मिलेगी, और मिलती भी है तो भी मसाइल होते हैं, ऐसा भी हुआ मिली भी तब भी गुजारा नहीं हुआ, ये सब क्या है, अगर अखलाक अच्छा उसकी बुराइयाँ करते हैं, वो ऐसी है वैसी है, फिर सोच सोच के बुराइयाँ निकालते हैं, वो तो जमात इस्लामी किताब पढ़ती है, फलाने करती, कुछ भी है, इसके लिए तलाक देना जायज़ हो जाएगा, तुमने उसको उसको तुमने मजलिसों में लेके गए कहीं पर, नरमी से मेहनत की, आपने अपने अखलाक दुरुस्त किए, कुछ भी नहीं है, बस खाली तलाक देने के बाद में सब अपने नफ्स को समझाते हैं, नफ्स का समझौता है, जब तक वो फाहिशा ना हो उसको तलाक देना जायज़ नहीं। ये सुन लीजिए, हजरत वाला ने यह मसला बयान फरमाया, बेनमाजी बीवी को भी तलाक देने का हुक्म नहीं है, उसको कहते रहो कहते रहो कहते कहते घिस जाओ, वो भी मर जाए हम भी मर जाए, लेकिन कहते तलाक फिर भी नहीं दी जाएगी। हाँ फाहिशा अगर वो खुदा न खास्ता दूसरों से ताल्लुक, जैसे आजकल मोबाइल पे है, यहाँ ये खतरनाक मामला है, यहाँ पे सोच सकता है आदमी, फिर उसकी इसलाह की कोशिश करे, बिस्तर अलग कर दे, घर भेज दे, कमेटी बिठाए, सब कुछ है, उसके बाद फिर वो तलाक उसको भी दे, एक तलाक दे दी, अब वो सोचेगी अब दूसरे के साथ जो मैं कर रही हूँ वो कहाँ तक बावफा होगा, मौका मिल गया 15-20 दिन मिल गए, दोबारा रुजू हो जाएगा, घर बस गया, एक तलाक देते हैं तो एक साथ 3 फायर करते हैं, कोई मौका ही ना हो दोबारा दोबारा करीब आने का। अल्लाह ताला हमें इन तीनों नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अखलाक खास कर देखी, हमारे हज़रत वाला का एक रिसाला जिसके पास ना हो हासिल करे, इस्लाह अखलाक, इस सारी बात सब उसमें लिखा है हज़रत ने, उसको बयान नहीं है वो, क्योंकि बयान में तो बहुत सी बातें ऐसी होती है ना मुंतशिर सी, हज़रत ने लिखा है, इस किताब को हमें हमारे यहाँ भी मौजूद है, खुद भी पढ़ें, साथियों को दें और बताएं और इस बात को आगे पहुंचाएं कि अखलाक कितने दुरुस्त होने चाहिए। तो ये औरतें अगर आएंगी, आप लोग लाएंगे, तो इनको ये फ़ायदा होगा ना कि शौहर के साथ कैसे कुछ भी कह दे, तुम्हें ज़बान हिलाने की इजाज़त नहीं। दूसरी शादी भी कर ले, तुम एहतजाज नहीं कर सकते। ये समझ, कितनी भी जो है वो नेक हैं, आलिमा है, सब कुछ हदीसों में है, साहबा चार चार शादी करते हैं, सब उनको पता है, अपना शौहर करे तो ये गवारा नहीं है किसी भी तरह। ये क्या है, ये सब दीन की कमजोरी है, दीन की कमजोरी। तो एहतजाज का हक नहीं है। हाँ, ये कह सकती है कि भाई देखें, अब एक ने हजरत ने फरमाया था ना, ये दिलजोई है। देखिए, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के होते हुए आपने दूसरा निकाह नहीं किया, ये दिलजोई थी। आपने हजरत खदीजा का दिल रखा और उनके होते हुए उनके बाद सारे निकाह आपने किए, उनके बाद सारे निकाह, इतना आपको उनसे मोहब्बत, बाद में भी ताल्लुक बहुत था। अम्मा आयशा फरमाती हैं, आप मेरे होते हुए भी हजरत खदीजा का जिक्र करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे आप। मुझे उन पर रश्क आता था कि ऐसी खातून थी कि मुझसे भी आप मोहब्बत करते हैं, और यकीनी तौर पे अम्मा आयशा ज़्यादा ताल्लुक था, लेकिन उनका फिर भी याद करते थे हजरत खदीजा, इतनी नेक पाकबाज खातून थी। तो आपने उनके, तो ये दिलजोई हो सकती है। जैसे हजरत ने फरमाया था, फलाने हमारे दोस्त थे शेरवानी साहब या कौन, उनके औलाद नहीं थी, दोनों ने अपनी बीवी से पूछा हुआ या नहीं हुआ कि भाई देखो तुम इजाज़त दो तो मैं शादी कर लूँ। उसने कहा कि हाँ इजाज़त है, लेकिन मुझसे कम हसीन हो, मुझसे ज़्यादा हसीन ना हो, इसकी शर्त, काली गलोटी हो ताकि ज़्यादा आप सिर्फ ज़रूरत पूरी करके आ जाएं, ऐसे लट्टू ना हो जाएं, लट्टू और फरेफ्ता ना हो जाएं। तो ये देखिए, इस पे हजरत एक और मसला इस्तेमाल करते, औरत नहीं चाहती कि मेरा शौहर कहीं और देखे, खालिक हुस्न को छोड़ के हम इन हसीनों के नज़ारे कर रहे हैं, हसीनों के नज़ारे कर रहे हैं। एक औरत आई एक अल्लाह वाले के पास, अल्लाह वाले पर्दा करते हैं, कोई अल्लाह वाला नहीं हो सकता, यहाँ औरतें बेबाक बैठी हैं, इधर औरतें बैठी हैं, इधर मर्द बैठे हैं, और वो मुबल्लिग साहब खारिजवान, आँख खोलो, ये बयान रिकॉर्ड होगा, आपका नाम आएगा उसमें, आप परेशान ना हो। एक तरफ लेडीज बैठी, एक तरफ जेंट्स बैठे, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले जेंटलमैन होना चाहिए, पहले मर्द फिर खवातीन। अब ये बयान कर रहे हैं, ये अल्लाह वाला नहीं हो सकता, अल्लाह वाला होगा तो उनको पर्दे में बिठाएगा, कहीं भी बिठाओ पर्दे में रखो। तो वो खातून आई अल्लाह वाले के पास और आके कहा कि आप तो पर्दा करते हैं, मैं भी पर्दा करती हूँ, अगर मैं आपको अपना चेहरा दिखा देती तो आप खुद फैसला करते कि मेरा शौहर मेरी मौजूदगी में फाहिशा और दूसरी औरतों के चक्कर में, यानी उसने खुद कहा मैं हसीन हूँ, और ये तो सबको पता ही होता है। तो ये सुनना था कि वो बुजुर्ग बेहोश हो गए। अरे भाई, तो कौन सी बात इसने से कह दी, मुरीदीन ने पूछा क्या कह दिया तुमने भाई, कुछ नहीं कहा मैंने तो। ये फरमाने लगे, मुझे ये ख्याल आया कि क़यामत में अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि मुझसे भी ज़्यादा कोई हसीन था जो तुम इधर देखते थे। औरत गवारा नहीं कर रही है कि मैं इतनी हसीन हूँ, फिर भी ये दूसरी तरफ देखता है, अल्लाह ताला ने मना कर दिया, उज़ू मेरा अबसार है, फिर भी हम इधर उधर नज़र मारते हैं। अल्लाह ताला में सच्ची तौबा नसीब फरमाए, हमारे अखलाक भी दुरुस्त फरमाए, और हम सबको अल्लाह वाली हयात अता फरमाए। अभी कल इंशाल्लाह, लो भाई ऐलान कर दो, और ऐलान करके दुआ भी करा लो हमारी तबीयत के लिए भी और सब के लिए। दो
कल इंशाल्लाह एक तो फजर के बाद जिक्र की मजलिस जैसे पूरे साल होती है, इंशाल्लाह वो भी होगी, और कल जो एक साल का कोर्स हमारा हजरत वालदान कातुम ने शुरू किया था उन लोगों के लिए जो मसरूफ हैं, मदरसे में दाखला नहीं ले सकते, उसकी इंशाल्लाह कल आखिरी क्लास है और कल वो पूरा हो रहा है, तो हिम्मत करके उसमें आना चाहिए तमाम। उसके बाद जोहर में इंशाल्लाह यहाँ सरजानी पावर हाउस पे जो पहली मस्जिद है, जहाँ ग्रीन बस का स्टॉप है, जहाँ से वह लाल मस्जिद के नाम से मशहूर है, गालिबन नाम उमर बिन अब्दुल अजीज़ है या उमर बिन